Hello and a very warm welcome to Political Economy with Shweta Punj. As India negotiates the bilateral trade agreement with the United States, one of the key sectors that is likely to be impacted and is very crucial to the growth of India's economy in terms of creating jobs and generating incomes and also making India a more competitive export-led economy is the textiles ministry. Today we are in conversation with Mr. Giriraj Singh, the Union Minister of Textiles, also a veteran political leader whose expertise extends beyond textiles. He's been at the helm of several ministries that have been working at the grassroots level to create and generate wealth and employment. Thank you very much, Mr. Giriraj Singh, for joining us. Thank you so much. Aapne samay nikala hamare money control se baat karne ke liye. Main jab abhi soch rahi thi ki aapse sabse pehla sawal kya pucha jaye, kyunki aapne itne mantralay mein kaam kiya hai. Pehle aap MSMEs में भी थे, अब आप टेक्सटाइल पे हैं. ये सारी हमारी बैकबोन इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, वेल्थ जनरेट करती हैं. अभी जब हमारी बात चल रही है, वीकेंड पे पीयूष गोयल जी अमेरिका जाने वाले हैं US के साथ ट्रेड अग्रीमेंट में बात करने के लिए. टेक्सटाइल्स का रोल उसमें बहुत क्रूशल रहेगा. तो गिरिराज जी, जैसे अब और अमेरिका भी बहुत टफ नेगोशिएटर माना जाता है, तो आपके हिसाब से टेक्सटाइल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी इस ट्रेड अग्रीमेंट में और जो यूके के साथ साइन किया है उसमें?
देखिए, आपने दो बड़े देशों का आपने नाम लिया, US का और UK का. USA का अभी लगभग मेरे जानकारी में $100 बिलियन का इम्पोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर में, जो मेरी जानकारी है, और उसमें हम $10 बिलियन पर हैं. और मेरा लक्ष्य है आने वाले दिनों में $25 से $30 बिलियन पर जाने का. तो मेरा प्रोडक्ट भी ह्यूमन आदमी से जुड़ा हुआ है, उसके मेहनत से जुड़ा हुआ है. और भारत के अंदर आज एबिलिटी, अगर नरेंद्र मोदी जी के योजना में, जो उनकी योजना होती है, बड़े परफेक्ट होती है. अभी देखिए NRLM, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, 10.5 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ा है. और टेक्सटाइल सेक्टर में मेजर रोल, मेजर काम, मेजर जो वर्क फोर्स है वो महिला ही है. तो हम पूरे देश में अभी US में हर तीसरा चौथा जो बेडशीट और टॉवेल है वो भारत से गए हुए हैं. तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी काफी है
जी.
और मेरा पूरा विश्वास है कि निगोशिएशन में जो भी हमें बताना था, कॉमर्स को हमने बता दिया है
जी.
कि आप हमारे लिए क्या करेंगे
जी.
उस ढंग से होगा. मैं तो कहा हूँ 0-0 पर करें, वो ना उनका ड्यूटी रहे ना मेरा. अच्छा,
ये आपने बोला है 0-0, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ा दिए गए तो बांग्लादेश जैसे कंट्रीज जो कि हमसे आगे निकल गए हैं टेक्सटाइल्स में, उनको और एडवांटेज मिल जाएगी.
देखिए, बांग्लादेश को मैं बार बार कहता हूँ, FTA के कारण उनको बेनिफिट मिलता है. क्योंकि उनके पास एंड टू एंड नहीं है. वो यार्न लेते भारत से, वो कपास लेते भारत से, अब डायरेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट कुछ करेंगे. लेकिन भारत में रॉ मटेरियल भी है और रॉ मटेरियल से लेके गारमेंट तक है. हमारे पास वर्क फोर्स भी है, क्वालिटी भी है, मार्केटिंग भी है. इसलिए हमें अगर किसी दुनिया में अमेरिका हो, अगर मेरा FTA रहे
जी.
तो हम चाइना को भी, किसी देश को हम पछाड़ने की ताकत है. और इसीलिए अभी 4.5 करोड़ लाख 4.6 करोड़ लोग हैं. मैं आने वाले जो हमारा 5 साल का है, हम 6 करोड़ से ऊपर लेबर उसमें जुड़ेंगे।
जी, तो ये जो यूके का एफटीए साइन हुआ है उससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल वर्कर्स को, वीवर्स को क्या क्या मुनाफा होगा?
बिल्कुल सही कहा। अभी हमारा केवल 1.5 बिलियन डॉलर है
जी,
और आज एफटीए के कारण मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल में हम मेनी फोल्ड में जाएंगे, कम से कम 5-6 बिलियन तक हम जाएंगे।
अच्छा
जी,
और एनी कोई कोई राज्य देश हैं जो कि आपको लगता है इसमें ज्यादा काम कर पाएंगे? कोई स्टेट्स जिनकी पॉलिसीज बहुत ही बेहतरीन रही हैं जिससे उन स्टेट्स में इन क्लस्टर्स को बढ़ावा मिलेगा?
देखिए, अभी सारे राज्य जो अब तक पिछड़े रहे वो भी, जो आगे हैं वो भी, वो अब पॉलिसी जो बना रहे हैं टेक्सटाइल, उनको मालूम है कि लेबर इंसेंटिव ये सेक्टर है
जी।
अब देखिए उड़ीसा ने भी बेहतर बनाया है
जी।
अब बिहार ने प्लग एंड प्ले मोड बनाया है, यूपी भी बना रहा है पीएम मित्रा में, मध्य प्रदेश भी बना रहा है, और जितने देश राज्य हैं देश के अंदर ये सब अब प्रो वर्कफोर्स पॉलिसी बना रहे हैं।
अच्छा।
ये एक सुखद है जिससे इंडस्ट्री को कोई कैपिटल सब्सिडी दे रहा है, कोई वेज सब्सिडी दे रहा है, तो ये तरह तरह के पॉलिसी बनाए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये भारत में टेक्सटाइल सबसे उभरता हुआ सेक्टर है और रहेगा।
जब हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं गिरिराज जी, अगर हम देश से बाहर जाते हैं तो 2-3 कंट्रीज के लेबल्स दिखते हैं, मेड इन इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। ये इन कंट्रीज ने भी हमको बहुत कंपटीशन दिया है। जो अभी बॉर्डर पे हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो हमने देखा है जैसे चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया ने भी अपनी बात बहुत ही कायदे से रखी है, इसका कोई इम्पैक्ट दिखता है आपको हमारे ट्रेड में, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे? कोई मशीनरी जो चाइना से आती हो अब हम नहीं मंगवाएंगे, ऐसा कुछ?
देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल में हम थोड़ा सा मशीनरी बनाने में थोड़ा हम पीछे है, लेकिन अब उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अभी स्विमिंग मशीन इंडिया में ही अब बनना शुरू, झुक्की का शुरू हुआ है। इसी तरह से कई मशीन हैं जो अब इंडिया में बनना शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदमी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
तो ये सप्लाई चेन की जब बात की जाती है हर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसमें चाइना पे डिपेंडेंस की बहुत बात होती है कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं अभी चाइना पे, और अभी अपने आप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। टेक्सटाइल्स में कितनी डिपेंडेंसी है?
नहीं, हम चाइना के डिपेंडेंसी पर नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश हैं जो बेहतर मशीन बनाते हैं, भारत में भी बन रहा है लेकिन दुनिया, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी उन पर नहीं है, अन्य आगे रहने वाला है।
चलिए, सुनने में बहुत अच्छा लगा। गिरिराज जी, दो और सवाल पूछूंगी। बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इस बार लग रहा है कि बहुत सारे युवा नेता अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। अगर आप थोड़ा क्रिस्टल बॉल गेजिंग करें, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी नीतीश जी ही वापस आएंगे या इस बार बिहार को किसी यंग नेता को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए?
देखिए, बिहार ने दंश झेला है। ये लोग प्रश्न करते हैं 20 साल पहले के बिहार को क्यों याद दिला रहे हैं, कि सोच वही है। लालू प्रसाद जी 20 साल पहले बिहार को जिस कदर से ले गए रसातल में, उनके लड़के आए
जी,
नीतीश कुमार जी ने उनको एक लाइफ दिया
जी।
मैं कहता हूं नीतीश कुमार, और जब वो हटे एक रैली की, वो अगर पिक्चर वो अगर देखेंगे आपके यहाँ होगा, वो मुनेठा बांध लिया पिताजी की तरह, हाथों को ऐसे ऐसे हिलाने लगा। ये बताता है कि उनका डीएनए ही है डिस्ट्रक्टिव, और ये डिस्ट्रैक्शन अब नहीं चाहिए बिहार को। अब बिहार में पहले बिजली थी नहीं, क्या हम फिर वही युग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। सड़कें नहीं थी, क्या फिर उसी युग में जाएंगे? अब इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, लोग अब नए तरह से जीना चाहते हैं, तो बिहार अब नए तरह से बढ़ रहा है। बिहार फिर उस युग में नहीं जाएगा जिस युग को लालू जी ने दिया था। अब उनके बेटे की सोच उससे बाहर नहीं है। हम रोजगार दे रहे हैं, वहां 1.5 करोड़ के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, लाखपति दीदी बन रही हैं। तो हम एक नए बिहार की कल्पना कर रहे हैं और वो उस ओर बढ़ रहे हैं। सड़कें, पुल, आपको भरोसा नहीं होगा, गंगा नदी पे और नदियों पे 17 बड़े बड़े पुल बने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर भारत में अब 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ, पीछे आपने देखा, क्या वो रोजगार नहीं दिया? बिहार में कम से कम हम 2 लाख करोड़ मोदी जी के आने के बाद उस पे खर्च हुआ है। हम जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, रिफाइनरी अब बन रहा था एक तरह से डंपिंग यार्ड, बरौनी रिफाइनरी बोलते हैं, मोदी जी ने कई हजार करोड़, 2500 करोड़ लगा के हल्दिया से तेल लाना, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी बनाना, और रिफाइनरी ही नहीं बनाया, जो श्रीमती कृष्णा शाही उस समय थी मिनिस्टर और राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बेगूसराय की धरती पे कहा था कि हम पेट्रोकेमिकल्स लाएंगे, वो लोगों को ठगा, लोगों ने वोट तो जरूर दिया उनके कहने पर। मोदी जी ने 25,000 करोड़ लगा करके अब पेट्रोकेमिकल्स भी होगा, अब बिहार को लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर टैक्स भी मिलता है। ये मोदी जी ने काम किया है, नीतीश कुमार ने काम किया है।
तो इस बार जो चुनाव का मुद्दा रहेगा, आपको लगता है इस चुनाव में डेवलपमेंट की प्लैंक रहेगा? कास्ट, जो जनजाति की बात होती है बिहार में, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल बैटल्स जो अभी तक लड़े गए हैं, वो इस बार थोड़े कम रहेंगे?
देखिए, मैं इसे नकारता नहीं। देश के अंदर कास्ट को हम हटा नहीं सकते, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास है
जी,
उसी कास्ट के फॉर्मुलेशन में जो राहुल गांधी, लालू यादव जी आज मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल परसों गए थे राहुल जी, बिहार गए थे, अब वो एक नौटंकी कर रहे हैं कास्ट सेंसस। बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस कर चुके
जी,
और नरेंद्र मोदी ने देश में किया, इनके नाना जी से लेकर के परनाना से लेके दादी से लेके पिताजी तक पिछड़ों को मंडल आयोग से लेके काका कालेलकर तक को हटाने का काम किया, फाड़ने का काम किया संसद में, लेकिन लाया नहीं। ये मोदी जी, नीतीश कुमार ही काम कर रहे हैं। कास्ट रहेगा
जी,
लेकिन भरोसा उसी पर होगा जिसने काम किया है।
जो कास्ट सेंसस है, उससे क्या क्या आपको लगता है कि हम जैसे लोगों को क्या लाभ होगा? उससे कैसे पॉलिसी इंटरवेंशंस बेटर हो पाएंगी? उससे कैसे प्रोग्रेस और इंक्लूसिव हो पाएगी?
देखिए, कास्ट सेंसस से एक ही चीज हमें लगता है कि अच्छा चीज होगा कि लोगों की गणना हो पाएगी। लोग कहते हैं आजादी से पूर्व हुआ, फिर एक बार हुआ, उसके बाद हुआ नहीं कास्ट सेंसस। इससे पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। तो स्वाभाविक है ये भी पता लगना चाहिए और फिर उसके लिए काम भी होना चाहिए, यही दोनों काम होंगे।
इस बार प्रशांत किशोर जी शायद चुनाव लड़े, कन्हैया कुमार फिर से शायद चुनाव लड़े, और ऐसे पिछली बार भी लड़े थे पर आप बहुत बड़ी मार्जिन से जीते कन्हैया कुमार के अगेंस्ट। तो गिरिराज जी, अभी अगर हम देखते हैं पॉलिटिक्स में बहुत सारे युवा नेता भी आते हैं और आपके जैसे वेटरन लीडर्स भी हैं, तो आप जब युवा नेता को देखते हैं तो क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? और प्रशांत किशोर जी जितना उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी बिहार के चुनाव में उनको काम देगी?
वो तो बाय इलेक्शन हुआ, उसमें प्रशांत किशोर भी पार्टी खड़ी थी, सभी लोग थे, बिहार की जनता ने एक सैंपल एक नमूना दिया है। प्रधानमंत्री पहली बार कहा है कि राजनीति में जिसके फैमिली में कोई पॉलिटिकल नहीं है, 1,00,000 लोगों को उसके लिए एक वेबसाइट भी बना है, ये एक अच्छी पहल है। और उससे लोगों को फिर लेना, नहीं तो एक बन जाता है। अब जो नेहरू आए, इंदिरा जी आई, राजीव गांधी आए, सोनिया जी आई, राहुल गांधी आए, प्रियंका आई, लालू जी आए, तेजस्वी आए, बेटी आया, बेटा आया, साला आया, सरहज आया, ये सारे लोग, ये इधर उत्तर प्रदेश आ जाए, मुलायम सिंह आए, ये भी परिवार से नहीं निकल पाए। पांच पांच लोग एक परिवार से, ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोहिया जी अगर देख रहे होंगे तो वो रो रहे होंगे, ये समाजवाद का कौन सा है? तो ये प्रधानमंत्री जी इसके भी विरोधी है
जी।
मैं नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देता हूं
जी।
उन्होंने आज तक परिवारवाद को आने नहीं दिया।
तो क्या आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे युवा नेताओं को? ये बोलना चाहेंगे कि परिवार को छोड़ के आगे निकलो, क्या बोलना चाहेंगे?
प्रधानमंत्री ने अपील की है
जी,
निश्चित रूप से जो युवा पारिवारिक रूप से उनके, हम ये नहीं कहते कि किसी के घर में कोई है ना आए, लेकिन उस परिवार से आए
जी
जहां कोई नहीं राजनीति में है, नई सोच लेके आएंगे। तो युवा आए, आगे आ करके बढ़ते हुए विकास को देखें, हम विकास को ही लेंगे, सारे चीज को लेते हुए क्या बिहार को हम, देश को हम कहां ले जाएंगे? आज देखें, मैं पहले कहा डिफेंस में हम क्या थे, हम इंपोर्टर थे
जी।
आज लाखों करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है, आज मेरा ही बना हुआ दुश्मन के लिए गले का घेग बना और चारों खाना चित हो गया
जी।
पाकिस्तान
जी।
तो भारत आज हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर भी बना रहा है तो डिफेंस भी बना रहा है, एग्रीकल्चर में भी आगे आ रहे हैं तो प्रोसेसिंग में भी आगे आ रहे हैं। आने वाले दिन भारत का है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई नौजवान देश है तो भारत है, और भारत का नेतृत्व ऐसा है जो चाहता है मेक इन इंडिया। आज मेक इन इंडिया कमाल कर रहा है देश और दुनिया में
जी। मेरा आखिरी सवाल गिरिराज जी, प्रशांत किशोर जी हैं, कन्हैया कुमार हैं, चिराग पासवान जी हैं, क्या ये लोग आपको लगता है बिहार के युवा को रिप्रेजेंट करते हैं? बिहार के युवा इन नेताओं के साथ जाना पसंद करेंगे?
देखिए, सभी कुछ नौजवान हैं, कुछ नौजवानी को ढाल बना के रखा है
जी।
लेकिन मैं किसी को नहीं कहता कि एक का नाम आपने लिया वो तो रिजेक्टेड माल हो गया।
अच्छा, किस किसकी बात कर रहे हैं?
जो पार्टी भी बदल लिया
जी जी,
जो आइडियोलॉजी को नहीं रख पाया
जी,
मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। दूसरे जो जा करके बिहार में, राहुल गांधी कह रहे हैं पलायन, खुद पलायनवादी है। आप देखा होगा कि अपना चुनाव हार गए, पलायन कर गए, दो जगह से कॉन्फिडेंस नहीं था, चले गए केरल। तो जो खुद पलायनवादी हो, एक ये दो युवा तो पलायनवादी हो गए
जी।
चिराग पासवान आज युवाओं में है क्रेज, सभी पार्टियों में। मैं यही कहूंगा कि आम युवा से कहूंगा, चिराग पासवान को लोग अपने ढंग से देखते हैं, हमारी शुभकामना है, लेकिन देश का युवा को आज विकास, आज विकास हो रहा है, तभी स्टार्टअप है। पहले स्टार्टअप का नाम नहीं था
जी।
आज 100-125 स्टार्टअप, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, लाखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। आज देश को ये माहौल चाहिए, ये माहौल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो भी नरेंद्र मोदी का हनुमान ही अपने को कहते हैं, इसलिए मैं उनको भी नरेंद्र मोदी के विजन के साथ देखता हूँ। आने वाले दिन में बिहार के चुनाव में विकास ही मुद्दा होगा, जिनको छदम राजनीति करनी होगी वो करेंगे, लेकिन बिहार का नौजवान, बिहार की जनता विकास 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 को ही चिन्हित करेगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही भरोसा करेगा।
थैंक यू वेरी मच गिरिराज जी, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।